ہم سبھی پیارے پیارے بابا سے ملنے کے لیے بڑی لگن کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں. 18 جنوری بابا کی وشیش سمرتی کا دن سبھی بہت سنیہ اور شردھا کے ساتھ پورے دیش اور ودیش میں سبھی بابا کے بچے تپسیا کے روپ میں وردانی دیوس کے روپ میں وشو شانتی دیوس کے روپ میں مناتے ہیں. آپ سب کو اویکت پارٹ کے وشے میں شاید کلاسز میں سنایا گیا ہوگا. ہم سب کی بابا نے اویکت روپ سے 48 ورش پالنا کی ہے. یہ 48واں اویکت دیوس ہم سب منانے جا رہے ہیں. ڈراما انوسار مجھاتما کو قریب 44-45 ورش بابا کے ایک ایک مہاواکیہ کو سننے ٹائپ کرنے اور بابا کی پالنا کا انوبھو کرنے کا بہت سندر گولڈن چانس ملا ہے. میں نے جب سے ٹائپ شروع کی 1973 سے شروع کی, اسی سمے سے ہی ہمیں دیدی اور دادی نے بابا کے ساتھ بیٹھ کر مرلی نوٹ بابا کے مہاواک کے نوٹ کرنے کا سوسر پردان کیا. جبھی بھی بابا آتے, چاہے وہ ہسٹری ہال سے شروع ہوا, پہلے وہی چھوٹا ہال تھا پانڈو بھون کا, اور بابا کو نیچے گدی پر بلاتے تھے. گدی پر بابا ہوتے تھے, سامنے بھوگ نہیں ہوتا تھا, اور ہم سبھی ساتھ میں چاروں طرف بیٹھ کر کے بابا سے ملن مناتے تھے. اور ایک ایک بچے کو بابا جو وردان دیتے تھے, میں اسے اپنی ڈائری کے اندر رات بھر نوٹ کرتا تھا. شام کو بابا کا اوترن 7 بجے کے لگ بھگ ہوتا, اور کبھی کبھی صبح 7-8 بجے تک بابا بیٹھتے ہیں. 12-13 گھنٹہ اویکت روپ میں بابا کا جو پارٹ چلتا, وہ دیکھنے کا, سب بچوں سے ملنے کا, بابا کی پالنا کا, وہ بہت سندر انوبھو ان آنکھوں سے دیکھا ہے. تو آج میرے کو یہی سنکلپ آیا کہ 48 سال بابا نے اویکت روپ میں ہم سب کی بہت اونچی اور شریشت پالنا دی ہے. شاید آپ سب کے پاس 48 سال کی مرلیوں کا بھی ریکارڈ ہوگا. میں نے 45 ورشوں کی مرلیاں تو خود پرنٹ کرائی ہیں, اور ہر ایک کتاب ہمارے لٹریچر وبھاگ میں اپلبدھ ہے. ایک ایک سال کی ایک ایک بک بنی ہوئی ہے. آپ سب اگر ان کتابوں کا, ہر ورش کی کتابوں کا ادھیان کریں گے, 21 جنوری 1969 سے بابا کا پارٹ شروع ہوا اویکت روپ میں گلزار دادی جی کے مادھیم دوارا, اور پچھلے 2014 تک کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں, جس میں اویکت سندیش بھی ہیں, اویکت مرلیاں بھی ہیں, بہت سندر سنگرہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس برہمن جیون میں سو انتی کے لیے, اپنی انتی کے لیے ہر ایک برہمن آتما کو اس ساہتیہ کا بہت اچھی طرح سے ادھیان کرنا چاہیے. ان مرلیوں میں بہت اونچا خزانہ ہے, اور بابا نے کوئی بھی ایسی دھارنا اویکت روپ میں جو ہم سب کے لیے آوشیک ہے, اویکت استھتی بنانے کے لیے अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए उन सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला है। हर टॉपिक पर आपको बाबा के महावाक्य मिलेंगे, जो भी हमारी धारणा की मुख्य टॉपिक्स हैं। कई बार बाबा ने सेवाओं पर भी विस्तार से समझाया है, इशारे किए हैं, लेकिन अधिकतर सेवाओं के साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा की स्थिति ऊंची से ऊंची बने, महान बने, उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर शिक्षाएं दी, बहुत अच्छी तरह से विधियां और युक्तियां बताई हैं। अगर उन युक्तियों पर हम थोड़ा सा भी गौर करते हैं तो ये हमारी जीवन बहुत सहज सरल योगी जीवन बन जाती है। और इस अव्यक्त पालना का सचमुच अगर रिजल्ट देखा जाए तो बाबा जो हम सबसे चाहते हैं वो हम सबके जीवन में आ जाए, यही बाबा का पालना का रिटर्न है। वैसे भी माँ बाप जब अपने बच्चों की पालना करते हैं तो उनका एक लक्ष्य रहता है कि ये बच्चे बहुत शक्तिशाली हों, समर्थ हों और इतना योग्य बन जाएं जो कभी भी किसी के आगे इनको हाथ न फैलाना पड़े, हर बात में सशक्त समर्थ हों, शरीर से भी स्वस्थ हों, बौद्धिक रीति से भी समर्थ हों और साथ साथ आर्थिक रीति से भी किसी पर डिपेंड न करें। माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह से पालना देते हैं। इसी तरह से अव्यक्त रूप में बाबा ने हम सबको हर शक्ति से, हर गुण से, हर ज्ञान की गहराई से अवगत कराया, अंडरलाइन कराया, वायदे कराए, प्रतिज्ञाएं कराई और उन पर चलने के लिए शक्ति दी। यहाँ तक भी बीच बीच में बाबा ने योग की ड्रिल कराई है, हर स्टेज का अनुभव कराया है और अव्यक्त वतन में होते हुए भी देश और विदेश के सभी बच्चे एक अनुभव करते हैं कि बाबा अभी भी हमारे साथ है। भले साकार में नहीं है लेकिन अव्यक्त रूप में हम बच्चों के साथ साथ है, हमारी पालना कर रहे हैं, हमें सकास दे रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। परसों की मुरली हम सबने सुनी थी कि बच्चे साकार में जो स्पीड नहीं थी सेवा की, अव्यक्त होते ही बाबा की स्पीड बढ़ गई। डबल लाइट स्थिति में आते ही कोई दूर दूर स्थान तक रोशनी भेजी या भेजनी होती है तो उसको ऊंचे स्थान पर रहना होता है, तो बाबा ऊंचे स्थान पर बैठ करके पूरे ग्लोब को जो लाइट दे रहे हैं, सकास दे रहे हैं, ये बाबा की अव्यक्त पालना है। और इस पालना के आधार से हम देख रहे हैं हजारों बच्चे, लाखों बच्चे बाबा के अपने पांव पर खड़े हैं, किसी पर निर्भर नहीं है, समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं और बाबा जैसा चाहता है वैसा उनकी प्रैक्टिकल जीवन दिखाई देती है। आने वाली कई परिस्थितियां, कई हिसाब किताब, कई कर्मभोग, उनका भी वो सहज सामना कर सकते हैं, इतने उनके पास समर्थी है, शक्ति है, क्योंकि बाबा ने एक एक बच्चे को ऐसे ज्ञान के गहरे और गुहे राज सुनाए हैं, ऐसी ऊंची युक्तियां बताई हैं जिनसे किसी भी परिस्थिति रूपी पेपर को बहुत सहज रीति से पार किया जा सकता है। तो बाबा की इस पालना का हम क्या रिटर्न दे सकते हैं? रिटर्न यही है, बाबा कई बार बहुत प्यार से कहते हैं, बच्चे सिर्फ अपने आप को टर्न कर लो, जो भी आपकी कमी है, कमजोरी है, संस्कार है, स्वभाव है, जो मध्यकाल की देन है, देह अभिमान जनित है, देह अभिमान के कारण, माया की प्रवेशता होने के कारण, जो कमी कमजोरी आई है, जो कड़े संस्कार बन गए हैं, उन कड़े संस्कारों को समाप्त करके जैसा बाबा है योर प्योर, ऐसे आप बच्चे भी बन जाओ। बाबा अपने समान बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने समय से हम सबकी पालना कर रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरे समान अव्यक्त बनकर अव्यक्त वतन की सैर करें। सिर्फ शरीर से अव्यक्त होकर के वतन में ना आए, लेकिन इस साकार शरीर में रहते हुए भी अव्यक्त वतन का अनुभव करें। उसके लिए बाबा हम सब के ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई और पालना दे रहे हैं। मैं समझता हूँ 2-3 वर्षों से जो बाबा की शिक्षाएं थीं वो समिट करके बहुत प्यार और स्नेह की पालना रह गई है, और वर्तमान समय बाबा भी दृष्टि से शक्ति भर रहे हैं, सकाश देने की सेवा कर रहे हैं। दादी के शरीर का स्वास्थ्य आप सब जानते हैं, उसके कारण अभी दादी जी को भी बाबा अपने पास ट्रांस में नहीं खींचता है। दादी जी सिर्फ बैठती हैं और दृष्टि देते देते बाबा का अवतरण हो जाता है। बाबा अपना दृष्टि से बच्चों को मिलना शुरू कर देते हैं। जो पहले थोड़ा सा आंख बंद होती थी, झटका आता था और लगता था कि अभी बाबा आ गए, लेकिन अभी 2 सालों से मैं देख रहा हूँ कि बाबा ऐसे ही नॉर्मल रीति से बैठे बैठे प्रवेश लेकर लेते, और दादी जी को भी जो पहले सो जाती थी, मर्ज हो जाती थी, उनको भी सुलाते नहीं हैं। दादी जी भी बाबा के महावाक्यों का श्रवण करती हैं साथ साथ, और कभी कभी बीच बीच में दादी का आवाज भी आ जाता है। तो साकार बाबा की मुरलियां आप सब सुनते हो, उसमें कभी बीच में ब्रह्मा बाबा के अनुभव हैं, कभी शिव बाबा के, शिव बाबा ज्ञान की बात सुनाते हैं, बीच बीच में ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना देते हैं। दोनों के मिक्स महावाक्य, और कई बार बहुत स्पष्ट अनुभव होता है कि बाबा बोल रहे हैं, ये शिव बाबा बोल रहे हैं। ऐसे ही इस समय अव्यक्त पार्ट में भी अब दादी बाबा के समान हैं, 3 आत्माओं का पार्ट चल रहा है, इसको समझना। कई ब्राह्मण आत्माएं मून जाती हैं कि पता नहीं बाबा बोल रहा है या दादी बोल रही है, क्योंकि आवाज भी परिवर्तन नहीं होती, लेकिन बाबा की प्रवेशता होती है, पता चलता है। बच्चों को बहुत प्यार से स्नेह से बाबा प्यार देते, दृष्टि देते, सकाश देते, कुछ महावाक्य बाबा बोलते हैं, और कभी कभी दादी के शब्द भी आते हैं बीच बीच में, क्योंकि मैं टाइप करता हूँ तो लगता है कि ये दादी खुद बोल गई। और आप सब मुरली से भी कैच करते होंगे, इसलिए मूंझना नहीं है, संशय बुद्धि नहीं बनना, ये क्या हो गया, ये बाबा का बहुत गुप्त पार्ट है, और उसको समझना, निश्चय बुद्धि हो करके अपनी बुद्धि को अचल अडोल रखना, ये भी बाबा की पालना का रिटर्न है। इतनी पालना दी है, इतना सिखाया है, इतना सजाया है, इतने ज्ञान रतन दिए हैं, अभी अंतिम समय में जो भी बाबा का पार्ट चल रहा है, ये नए बच्चों के पालना और स्नेह और सकाश देने का पार्ट है। इसलिए बाबा क्यों नहीं कोई ऐसी शिक्षाएं दे रहा है, क्यों ऐसी बात हो रही है, इन बातों में उलझना नहीं। बहुत कुछ बाबा ने पढ़ाया है, और अब उस पढ़ाई का बाबा रिटर्न चाहता है। वो रिटर्न ये है कि जैसा बाबा चाहता है ऐसी हमारी स्थिति बन जाए। सबसे पहले बाबा एक एक बच्चे को जब भी देखते हैं, साकार में भी देखा, अव्यक्त रूप में भी, बाबा अपने बच्चों को राजा बच्चा देखना चाहते, स्वराज्य अधिकारी, कर्म इंद्रिय जीत, ये रिटर्न बाबा का है, बाबा ने इतना हम सबको पहला लेसन पढ़ाया है। आत्मा का लेसन हम सब ने साकार मूल्यों में पढ़ा है और अभी तक भी बाबा यही पढ़ा रहे हैं। बच्चे देही अभिमानी आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो, और ये प्रैक्टिस जितनी होती जाएगी उतना इन कर्मेंद्रियों पर शासन हो जाएगा, आत्मा स्वराज्य अधिकारी बनती जाएगी। जिसका स्व पर राज्य है उसको कभी भी कोई कर्म इंद्रिय धोखा नहीं दे सकती। तो बाबा की पालना का ये रिटर्न हम सबको देना है कि हम सब स्व के राजा बने, अपने आप पर राज्य करना सीख जाएं, कभी भी ये न कहें कि मैं चाहता नहीं था, मेरे मुख से ऐसा हो गया, निकल गया, मैं करना नहीं चाहता था लेकिन मैंने कर लिया। ये वशीभूत परवश स्थिति बाबा को पसंद नहीं आती, इसलिए हम सब बाबा की पसंद जो कोई बातें हैं उन पर अंडरलाइन करें। मैं आज आपको 7-8 बातें बताता हूं जो बाबा को बहुत पसंद आती हैं, और उन्हीं बातों पर अगर हम अंडरलाइन करके अपनी जीवन उसी तरह से ढाल लेंगे तो यही बाबा की पालना का मैं समझता हूं रिटर्न है, वैसा हम बन जाएंगे। तो सबसे पहले स्वराज्य अधिकारी की स्थिति कहाँ तक हमारी बनी है, एक एक कर्मिंद्री पर मुझ आत्मा का कितना शासन है, इन आँखों पर, पहले तो अपने मन पर कितना कंट्रोल है, क्या हम इस मन को एक सेकेंड में ब्रेक दे सकते हैं, रोक सकते हैं। जो संकल्प मेरे काम के नहीं है, जिन संकल्पों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ऐसे संकल्प जो व्यर्थ हैं, साधारण हैं, नेगेटिव हैं, उन पर ब्रेक कहाँ तक लग सकती है। एक सेकेंड में बाबा जैसे बच्चों को कहते हैं, बच्चे सेकेंड में मेरे पास वतन में आ जाओ, कौन जाएगा वतन में, आत्मा निकल के तो नहीं जाएगी शरीर से, वो तो शरीर के अंदर ही है। लेकिन ये जो इसकी सबसे पहली शक्ति है जिसको अंतर मन वाहन कहते हैं, अंतर्वाहक शरीर कहते हैं, इस मन की शक्ति से, संकल्प की शक्ति से हम इस साकार वतन से अव्यक्त वतन, मूल वतन का सैर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत कंट्रोलिंग पावर चाहिए, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। और लास्ट मुरली में भी बाबा ने पहली 31 दिसंबर की मुरली में अंडरलाइन कराया है कि बच्चे इस प्रैक्टिस को बढ़ाओ, जितना इसको कर सकते हो, संकल्पों को ब्रेक देने का, रोकने का, इधर उधर के सब संकल्प शांत हो जाएं और बस जिधर जाना है उधर ही संकल्प चलें, ऐसी एकाग्रता का अभ्यास करो। तो जो बच्चे इस एकाग्रता का अभ्यास कर रहे हैं, जिन्होंने अपने मन और बुद्धि पर, अपने संस्कारों पर, अपनी दृष्टि पर, अपने बोल पर, अपने कर्म पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और कर रहे हैं, वो बाबा के पालना का रिटर्न है। और वो रिटर्न दे करके बाबा को बहुत पसंद आते हैं कि ऐसे बच्चे जो बाबा कहता है वो करके दिखाते हैं। दूसरी बाबा की आस से कि मेरे बच्चे बेगमपुर के बादशाह बने, बेफिकर बादशाह, जैसे ब्रह्मा बाबा की जीवन सदा निश्चिंत रहे, सदा वो आराम की सैया पर रहे। लास्ट मुरली में भी ये अंडरलाइन कराई है कि बच्चे अति इंद्रिय सुखमय जीवन का अनुभव करो, हर एक कल का दिन, अव्यक्त दिवस मनाने के लिए आप आए हैं, भागा दौड़ी नहीं करना, चांस मिलता है जहां बैठने का चांस मिलता है बैठ करके बाबा के कमरे में जाओ, कुटिया में जाओ, झोपड़ी में जाओ, यहाँ भी चार धाम हैं, प्रकाश स्तंभ पर जाओ, तपस्या धाम में, इधर बाबा का कमरा, बहुत साइलेंस में, बहुत अव्यक्त वतन का सैर करते हुए एक सेकेंड में अपने बाबा के पास वतन में पहुंच जाओ। साकार में अव्यक्त का मिलन का रस तो हम सब ने बहुत समय लिया, अभी बाबा चाहते हैं बच्चे मेरे अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन का अनुभव करें। मैं समझता हूं आप सभी ने जिन्होंने सौगात ली है वहां तो उठाओ, सौगात में आपके पास एक बुक आई होगी, छोटी सी बुक। कुछ समय पहले बाबा ने मुझे ऐसे ही टच किया, बच्चे अभी अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त मिलन होना चाहिए, और वो किताब उसी लक्ष्य से तैयार की है जो आपके हाथ में आई है। आप इसको कल सवेरे सवेरे जब समय मिले, स्नान के बाद 15 मिनट में, 20 मिनट लगता अधिक नहीं, मैं इसको कई बार पढ़ चुका हूं, उसमें अव्यक्त मिलन क्या है और अव्यक्त मिलन की विधियां क्या हैं, किस तरह से हम अव्यक्त वतन में अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकते हैं, और साइलेंस की शक्ति और शुभ संकल्पों की शक्ति क्या है, इन चार टॉपिक को 18-18 पॉइंट में लिखा गया है। और मैं समझता हूं इसकी अच्छी स्टडी आप करेंगे तो आप बहुत सुंदर अनुभूतियां कर सकते हैं। कैसे हम सारा दिन अव्यक्त वतन का सैर करें, वहां स्थान की भी कमी नहीं है, जितना चाहिए वहां स्पेस है, और जितना समय चाहे बाबा से रूह रिहान कर सकते हैं। हर बच्चे को बाबा अपना अनुभव कराएगा मिलन का, साकारी मिलन का अनुभव अव्यक्त स्थिति के द्वारा करने के लिए आपको कुछ बातों से उपरांत तो जरूर रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी उपरांतता यही है कि हम व्यक्त और व्यर्थ बातों से उपराम हो जाएं, मन के द्वंद से उपराम हो जाएं, जो मन के अंदर बहुत डायलॉग चलते हैं ना, ये क्यों, क्या, कैसे, ये क्या, वो क्या, उस द्वंद को समाप्त करके उसको शांत कर दो, शीतल कर दो कि जरूरत नहीं है, आज के दिन तो प्रभु मिलन करना है, अव्यक्ति मिलन करना है, बाबा के साथ का अनुभव करना है। तो ऐसा अनुभव सवेरे से लेकर रात तक करेंगे तो मैं समझता हूँ हरेक इस अव्यक्त दिवस में बहुत अच्छे अच्छे वरदान बाबा से ले सकेंगे। और सबसे अच्छा वरदान यही है, कलयुग में जबकि चारों ओर हर आत्मा चिंताओं की चिता पर बैठी हुई है, हर एक को कोई न कोई चिंता है, फिक्र है, फिक्रात है, बाबा के बच्चे इन सब चिंताओं से मुक्त हो जाए। बाबा बैठा है, जब कोई बड़ा बैठा होता है तो सब जवाबदारियां उसको सौंप दी जाती हैं, और बाबा भी चाहता है कि मेरे बच्चे अब मेरे को सब जवाबदारियां दे करके बहुत आराम की निश्चिंत स्थिति का अनुभव करो, कोई नई बात होने वाली नहीं, सब पुरानी बातें हैं, नथिंग न्यू। जब नई कोई सी नई ही नहीं तो सोच क्यों रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा कैसे हो रहा, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, हर बात में कुछ रहस्य हैं, कुछ राज हैं। उन रहस्यों को, उन राजों को समझ करके अपने आप को राजयुक्त बना करके बहुत आराम की स्थिति का अनुभव करो, ये बाबा की पालना का रिटर्न है। बाबा का बेगमपुर की स्थिति का देखना हो, अव्यक्त रूप में भी हमने देखा कई जगह पर बाबा अपने टांग पर टांग चढ़ाए, ऐसे मस्त स्थिति में बैठते जैसे कुछ हुआ ही नहीं, हो ही नहीं रहा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। साकार में भी बाबा का एक दो पोज आप देखेंगे, यहाँ दादी जी मीटिंग हॉल में लगे हुए पोज, एक पहाड़ी पर बाबा ऐसा लेटा हुआ है आराम से, जबकि बेगरी पार्ट का समय था, उस समय बहुत बड़ी परीक्षा थी यज्ञ के ऊपर, आर्थिक परीक्षाएं आई थी एक डेढ़ साल के अंदर, उस समय बाबा कितना निश्चिंत बेगमपुर का बादशाह, बच्चे किसके बच्चे हैं ये, मैं जवाबदार हूं या वो है, मैं क्यों चिंता करूं, जिसके बच्चे हैं वो खिलाएगा, वो पालना देगा। बाबा अपने आप को एकदम बेफिक्र निश्चिंत बना करके तपस्या की, और वो बेड़ा, वो जो पेपर था वो पार हो गया। तो बाबा भी चाहता है कि बच्चे किसी भी प्रकार के पेपर में जल्दी जल्दी अधैर्य न हो, बहुत धैर्यता के साथ बात आई है खत्म हो जाएगी, सर्वशक्तिमान बाबा हमारा साथी है, सर्व समर्थ बाबा साथी है, उसको साथ रख करके आई हुई परीक्षाओं को ऐसे पार करो जैसे बार बार कई बार पार की है, कोई बड़ी बात है ही नहीं, नथिंग न्यू। तो ऐसे पार करके बहुत अच्छी निश्चिंत आराम की सुखमय सैया, उस पर विश्राम करो, जैसे विष्णु को दिखाते ना, खीर सागर में लेटा हुआ है, पांव पर पांव चढ़ाए हैं, शेष नाग की छाया है, उस शेषनाग की सैया पर आराम से विश्राम कर रहा है। तो हम सभी भी कलयुग की हलचलों के बीच में, हलचलें तो बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी, चाहे प्रकृति के द्वारा, चाहे व्यक्तियों के द्वारा, चाहे सरकारों के द्वारा, अनेक प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, आ रही हैं। लेकिन बाबा के बच्चे जिन्होंने इतनी बाबा की पालना ली है, वो बाबा को ये रिटर्न दें कि कुछ भी हो, मैं अपनी आराम की सैया से नीचे नहीं आऊंगा, हलचल में नहीं आऊंगा, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझूंगा नहीं, तब कहेंगे पालना का ये रिटर्न दे रहे हैं। तीसरा, बाबा चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा मेरे समान मास्टर दाता बन जाए। मांगता नहीं, बाबा मुझे शक्ति दो, शांति दो, खुशी दो, ये दो, ये दो। अब बाबा अपने बच्चों के स्वरूप में नहीं देखना चाहता, कहता बहुत कुछ बच्चे मैंने तुम्हें दिया है, सिर्फ उसको जीवन में उतार करके मेरे समान मास्टर दाता बन जाओ। जो आत्मा आए उसको अपनी दृष्टि से, अपने अच्छे वाइब्रेशन से, अपनी मधुर वाणी से बहुत सुंदर अनुभूतियां करा दो। जो कुछ बाबा ने मुझे दिया है, सुख दिया, शांति दी, प्यार दिया, पवित्रता दी, जो शक्तियां मुझे दी हैं मेरी दृष्टि से, मेरे वाइब्रेशन से, मेरे बोल से, उन सब को प्राप्त हो जाए। जो कुछ बाबा ने दिया है, हम सबको अथाह दिया है, सब खजाने भरपूर किए हैं, हमको बाबा मास्टर दाता के रूप में देखना चाहता है। मांगता नहीं, लेकिन दाता वही बन सकेगा जो भरपूर होगा, संपन्न होगा, जिसने खुद अनुभव किए हैं सब कुछ। तो हम सब अनुभवी मूर्त बन करके बाबा की पालना का ये रिटर्न करें कि हम सबको देने वाले बन जाएं। जो हमारे सामने आए या दूर बैठी हुई आत्माएं जो बहुत दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, भगवान को पुकार रही हैं, अपने इष्ट देवों को पुकार रही हैं, क्या कुछ समय इष्ट देव बन करके अपने भक्तों को, उनकी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं? ऐसे मास्टर दाता बन करके बैठो जैसे कोई देवी बैठी हो और उसके सामने भक्तों की लाइन लगी हो और उनकी मनोकामनाएं वो पूर्ण कर रहे हो। हो सकता है ऐसा? ताली नहीं बजाओ, अनुभव करो। ताली बजाने से तो उड़ जाएगा हवा में। अनुभव करना कि बाबा ने इतना दिया है, इतना दिया है। देने वाला दाता देवता कहलाता है, मांगने वाला देवता नहीं कहला सकता। तो हम सब कुल देव कुल देवियां हैं और कुल देव कुल देवियों को, अपनी सारी प्रजा को, सारे भक्तों को कुछ न कुछ देने की जरूरत, अंजलि देनी जरूरी है, शांति की, सुख की, प्यार की, जिसकी आज बहुत कामना है भक्तों के अंदर, व्यक्तियों के अंदर, वो कामनाएं हम अपनी सकास से पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा देने वाले हम सब बन जाएं, जैसे बाबा दे रहा है वतन में बैठकर, हम भी बाबा के साथ ही बन करके सारे विश्व को, सर्व आत्माओं को देने वाले मास्टर दाता बन जाएं। चौथा, इस संगठन के बीच में जरूरी है हम अपने सम्मान में रहते हुए सम्मान दाता जरूर बने। सम्मान हर एक व्यक्ति को चाहिए, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है। अगर किसी स्थान पर उसको सम्मान नहीं प्राप्त होता तो बहुत जल्दी उसको फीलिंग आती है, मूड खराब हो जाता है। इसलिए आवश्यक है देखना मेरा मूड तो नहीं जल्दी जल्दी खराब होता है। कई बाबा के घर में आते हैं, थोड़ी सी सुविधाएं नहीं ठीक मिलती, बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा संगठन, हम लोग संख्या बांटते हैं 16,000 की और आ जाए 25,000, 22,000, क्या होगा? सबको एक जैसी व्यवस्थाएं मिल सकेंगी? कुछ एक को तो जरूर टेंट में सोना पड़ेगा, कुछ एक तो जनरल में जहां भी जैसी व्यवस्था मिलेगी वो मानना पड़ेगा। लेकिन कई बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों में अपने मूड को खराब कर लेते हैं। मैं अगले साल से नहीं आऊंगा, बहन जी आप मुझे ऐसे स्थान पर क्यों लेके आई? यही स्थिति है क्या? आज कुंभ मेले में आप जाओ, देखो कितना स्थान आपको मिलता है, कहाँ पड़े होते हैं लोग, श्रद्धा कितनी, भावना कितनी। मैं एक बार कुंभ मेले में गया इलाहाबाद में, मैं भक्तों को कहा आप धन्य हो, मैं आपके आगे कुछ भी नहीं हूँ। कहाँ इतनी ठंडी के बीच में, जहाँ धूप भी नहीं निकल रही है, रेत में लोग रात को ऐसे ही एक छोटा कंबल ओढ़ करके लेटे हुए हैं, रेत के अंदर वहीं लेटिन जा रहे हैं, वहीं गंगा जी में नहा रहे हैं। इतना गंदा हाल, मैं देख करके कहा ऐसा भक्तों की लीला क्या है ये। अब भक्तों से तो हम बच्चे बन गए, इतना बाबा प्यार से पालना दे रहा है, पढ़ा रहा है, प्यार से ब्रह्मा भोजन खिला रहा है, ऐसा तो नहीं बाहर सुला दिया गया है। लेकिन फिर भी कोई कोई बहुत जल्दी अपने मूड को अपसेट कर लेते हैं। बाबा कहता बच्चे इसको खुशनुमा मूड रखो, बहुत प्रसन्न चित्त मूड रखो, मूड को जल्दी जल्दी बदलने नहीं दो, परिस्थितियां और बड़ी विकराल आने वाली हैं। अभी तुम्हारे पास सब साधन हैं, सुविधाएं हैं, आराम से रहे हुए हैं, इन एक सेकंड के लिए विचार करो, अगर लाइट चली जाए तो क्या होगा, कहाँ कहाँ से ठहर जाएंगे लोग, सारी कारोबार ठहर जाएगी। ऐसे समय में जब अंतिम समय के समीप हम जा रहे हैं, तो हमको हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो बहुत अच्छी स्थिति में रह करके सबको सम्मान दो और ऊंचे सम्मान में रहो। बाबा आपने जो कुछ मुझे दिया, जितना दिया वो बहुत कुछ दिया है, हमको तो अविनाशी प्राप्तियां कराई हैं, ये स्थूल में जो है उतनी बहुत है, भेंट नहीं करो, इसको तो यहाँ मिला, मेरे को यहाँ मिला। बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को छोटी छोटी बातों में अपसेट कर लेना, मैं समझता हूँ बाबा की इतनी ऊंची पालना का वो रिटर्न नहीं दे रहे हैं। बहुत अच्छा रिटर्न ये है कि हमारी स्थिति इतनी सम्मान और समान के अंदर स्थित हो कि हम कौन हैं, किसके हैं, बाबा हमको क्या बनाने के लिए आया है। तो ऐसी स्थिति में स्थित रहना, ये है पालना का रिटर्न। पांचवी बात है, बाबा चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा सदा एवर रेडी रहे, कुछ भी हो, ये न कहे ये काम रह गया, ये धंधा रह गया, ये बात रह गई, बाबा अभी तो मैं तैयार नहीं हूं। बाबा ऐसे बच्चों को कहता बच्चे डिले इज डेंजर, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अंतमति सोगति, अंतिम सीन के लिए हर एक को हर समय तैयार रहना चाहिए। जैसे हमारी मम्मा का स्लोगन रहा बच्चे हर घड़ी अंतिम घड़ी है, इसलिए अंतिम घड़ी को सामने रख करके वो सदा एवर रेडी रही, किसी समय भी शरीर से निकले आत्मा तो एक बाबा दूसरा न कोई, बाबा के सिवा कोई स्मृति में न रहे। इतनी अच्छी प्रैक्टिस और बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल से बाबा से जिगरी प्यार चाहिए। मैं तो अंत समय आएगा तो पता नहीं कहीं दुकान में, कहीं मकान में, कहीं संबंधों में, कहीं संस्कारों में, कहीं कई बंधनों में बुद्धि लटक जाएगी, अटक जाएगी, भटक जाएगी। इसलिए क्या करना है, पहले से ही डिटैच हो जाओ सब बातों से, हम तो सबसे मरे हुए हैं। अगर ऐसी स्थिति बना ली तो एक सेकंड में आत्मा कहेगी बाबा मैं एवर रेडी हूं, भले जहां चाहिए वहां ले चलो, जो सेवा चाहिए वो करा लो। ब्रह्मा बाबा दादियां हमारी ऐसी उपराम, ऐसी न्यारी प्यारी, सबकी प्यारी है, सब क्या कहते हैं मेरी दादी, मेरा बाबा। अब बाबा भी बच्चों से कहता अरे बच्चे अभी हम ये अनुभव नहीं कराओगे क्या, सबको अनुभव कराओ, सब मेरे हैं, कोई अलग नहीं है। ऐसे अपनेपन की अनुभूति कराते हुए, सबको स्नेह देते हुए, अटैच नहीं हो जाओ, डिटैच होने का अभ्यास करो, देह और देह के संबंधों से डिटैच, तब कहेंगे एवर रेडी और उपराम है। ऐसे हाथ उठाएंगे तो सब उठा देंगे, लेकिन बनना बनना, अभी सब नहीं बने हैं, हाथ भी झूठा हो जाएगा, इसलिए एक दूसरे को देख करके नहीं उठाना है, इसकी प्रैक्टिस चाहिए। जब योग में बैठते हो ना तो देखो कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है, किधर किधर जाती है, कौन कौन सी रस्सियां हैं, दिखाई देता है। जब आत्मा एकांत में बैठती है ना तो पता चलता है अभी तक भी ये संस्कार है, अभी तक भी ये आदत है, अभी तक इसकी आकर्षण है, इस व्यक्ति की है, इस वस्तु की है, इसका प्रभाव है मेरे ऊपर, इसकी छाया है मेरे ऊपर, फट से पता चलता है। और अगर वो पता चल रहा है तो उसको चेक करो, उसको ज्ञान योग की कैंची से काटो, जिसको मुझे काटना है, इससे निर्बंधन बनना है। जब तक आत्मा स्वतंत्र पंछी नहीं बनी तब तक वो उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकती, पहले स्वतंत्र बनना पड़ेगा। तो एवर रेडी के साथ साथ, उपरांता के साथ साथ चेक करना कि मैं इतनी डबल लाइट स्थिति में रहता हूं, कोई भी बोझ नहीं है। बाबा अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहता है, बाबा की आस है कि मेरे बच्चे मेरे समान डबल लाइट बन जाएं। बाबा भी डबल लाइट है ना, न शरीर का बोझ है न कोई हिसाब किताब का बोझ है, एक तो बोझ नहीं है, हल्का है, और दूसरा प्रकाश स्वरूप है। ऐसे ही हम सब बच्चे भी भले इस देह में हैं, लेकिन प्रकाश की काया को धारण करने का अभ्यास करें। है आपके पास, सबके पास प्रकाश की काया सबके पास है। सूक्ष्म शरीर हर आत्मा के साथ रहता है, भले उसमें धब्बे हो सकते हैं, कोई लाइट के साथ साथ कालापन हो सकता है। अगर कोई के बहुत व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प चलते हैं तो उसकी जो ड्रेस है ना, वो धब्बे वाली है, काली है। इसलिए जब आत्मा उसका शरीर छूटता है तो आत्मा उस काली छाया से कभी कभी किसी को डरा देती है, भूत के रूप में। इसलिए बाबा कहता है बच्चे इसको व्हाइट लाइट वाली ड्रेस पहनाओ, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प न रहे। वो फरिश्ता बन करके सेवा कर सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, किसी को भी बड़े प्यार का, सुख का, अपनी रक्षक के रूप में रक्षा का अनुभव करा सकता है। अनुभव करेंगे कोई रक्षक मेरे हैं। अब बाबा चाहता है कि बच्चे ऐसे योगी बनो, ऐसे तपस्वी बनो जो संकल्प की, दृष्टि की, संस्कारों की एकाग्रता से एक स्थान पर बैठे हुए दूसरे स्थान तक कहीं पर भी अपना अनुभव करा दो कि हम आपके साथ हैं, और वो अनुभव करे कि वो व्यक्ति, वो भाई, वो बहन मेरे पास आई थी और मुझे अनुभव कराया था, मेरी प्रॉब्लम हल की थी, मेरे सिर पर हाथ फेरा था, मेरी बात सुनी थी। ये अनुभव पता है, एक बार मैंने सुनाया था, एक बार हमारी दादी जी ने, टाइम हो रहा है मैं दो मिनट में सुनाऊंगा, हमारी दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया, दादी प्रकाशमणि जी ने, कि तुम सब भाई लोग इन गुफाओं में जाओ माउंट आबू की, क्योंकि गुफाएं बहुत दूर दूर हैं पहाड़ों पर और यहां सन्यासी अभी भी रहते हैं गुफाओं में, कभी कभी उतरते हैं मास में, दो मास में, कोई कोई साल भी नहीं उतरते हैं, ऊपर ही रहते हैं, और उनको खाने के लिए उनके चेले लोग नीचे से कुछ न कुछ पहुंचा देते हैं। तो दादी ने कहा इन सब संतों को, इन महात्माओं को जो भी तपस्या कर रहे हैं, गुफाओं में रहते हैं, कई अभी खाली हो गई, अभी कई भी हैं, तो आप लोग जा करके इनको निमंत्रण दो और बोलो दादी जी ने आपको ब्रह्मा भोजन के लिए बुलाया है, निमंत्रण दे के आओ, लेकिन एक विधि अपनाना, ऐसे लोग ही आएंगे नहीं, तुम पहले सूक्ष्म शरीर से उनके पास पहुंचना। सवेरे सवेरे अमृत वेले जब योग करो तो उनको इमर्ज करना कि मैं उस गुफा में गया हूं, वो महात्मा जी बैठे हैं, मैंने उनको निमंत्रण दिया और उन्होंने स्वीकार किया और आ रहे हैं, वो संकल्प देना उनको। तो हम लोगों ने सवेरे सवेरे ऐसा योग किया, प्रैक्टिकल बताता हूं। फिर हम चार भाई, मैं खुद भी उसमें था, चार भाई एक गुफा में पहुंचे, अलग अलग भेजा था दादी ने, ग्रुप बना दिए थे। तो जब हम एक गुफा में पहुंचे तो जाते ही वो हम लोगों को देख के बोलता है आप लोग तो सवेरे आए थे ना। तो मैंने कहा नहीं, हम नहीं आए थे, तो मुझे याद नहीं था कि मैं सूक्ष्म शरीर से यहां पहुंचा होगा। कहता नहीं नहीं आप लोग आए थे, आपने दादी का निमंत्रण दिया था, मुझे तो याद आता है, मेरे को आपकी शकल भी याद आती है, हम कह रहे हैं हम नहीं आए और वो कह रहा है आप आए थे। क्योंकि हमको थोड़ी अनुभव था कि उसके पास हम गए होंगे, वो तो बाबा ले गया होगा, बाबा ने उसको अनुभव कराया होगा। तो ऐसे हम उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम सूक्ष्म शरीर से सबको आह्वान करें, पहले अच्छे संकल्प भेजें, बहुत पॉजिटिव संकल्प। ऐसे नहीं सोचो कैसे आएंगे, वो तो आए ही नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं मानते। एक जगह में गया, बहुत ऊंची गुफा में पहुंचा, बहुत ऊंची गुफा थी गुरु शिखर की, उधर उस साइड चोटी पर। उस गुफा का सन्यासी तो आता ही नहीं था नीचे, 6 महीने में भी, 1 साल में। वो जाते ही कहता है, मैंने सुना है कि ब्रह्मा कुमारियों में जाने से ना संतों को उल्टा लटका देते हैं। हमने कहा, महात्मा जी ये कहां से आपने सुन लिया? कहते हैं, नहीं हमारे चेले कभी कभी सुना के जाते, इसलिए हम लोग आपके पास नहीं आएंगे। हमने कहा, महात्मा जी सुनी सुनाई बातों में बहुत अंतर होता है, दादी जी ने आपको ब्रह्मा भोजन के लिए बुलाया है और आपको जरूर आना है। बहुत प्यार से उसको निमंत्रण दिया और सचमुच उतर के आ गया। और आया तो दादी जी ने उसको इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, कंबल की सौगात सबको दिया, बहुत खातरी की, इतने खुश हो गए। कहते हैं, हमने सुना क्या था और संस्था करती क्या है, सुनाते लोग क्या क्या हैं। तो ऐसे हमने देखा है कि सब आत्माओं को अभी डबल लाइट स्वरूप से सेवा करके इनको समीप लाना है। जो दूर दूर है ना, हमसे नहीं मानते हैं, उल्टी सीधी बातें सुनी हुई हैं, बहुत दूरियां बढ़ा करके रहते हैं, उनको वाणी से आप ज्ञान नहीं दे सकते। उनके लिए आपको सूक्ष्म सकाश देनी पड़ेगी, उनको लिए बहुत शुभ भावनाएं बहुत भेजनी पड़ेंगी। और उन शुभ भावनाओं से जब वो लोग नरम हो जाएंगे, फिर आप उनको कहेंगे तो आ जाएंगे, पीछे पीछे आ जाएंगे। इसलिए बाबा अभी बच्चों को चाहता है कि ये मेरे बच्चे डबल लाइट स्टेज में रहें, बहुत हल्की स्थिति में रहें, कोई बोझ नहीं, कोई चिंतन नहीं। बाबा का कार्य हुआ पड़ा है, सेवा का भी बंधन नहीं लो। कल बाबा ने कहा ना, टेंशन का भी टेंशन नहीं लो, बहुत हल्के रहो, बाबा हमारा साथी हमको साथ ले जाएगा, हमको सिर्फ उसके कदम पर कदम रखना है बस, कोई नया रास्ता नहीं लेना। तो बाबा की पालना का रिटर्न है, जो बाबा ने कदम रखे हम बच्चे भी कदम पर कदम रख करके बाबा की आशाओं को पूर्ण करें, समान और संपन्न बने। अब बाबा के साथ उड़ने का समय है, इसलिए बाबा कहता सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित्त स्थिति में रहना। भागो नहीं, 3 मिनट सब योग करके जाना, ठीक है? मैं जानता हूं समय हो रहा है अमृत वेले उठना होता, आप सब 5 मिनट के लिए इस देह से बिल्कुल डिटैच होकर के अपनी भ्रकुटी की गुफा में बैठ जाओ। चारों ओर एक लाइट का सुंदर आभा मंडल अनुभव करते हुए उस प्रकाश के शरीर से प्रकाश की दुनिया में ब्रह्मा बाबा के सामने शिव बाबा का आह्वान करो और अनुभव करो कि बाप दादा हमारे सामने हैं और बाप दादा की दृष्टि हमारे ऊपर आ रही है। ऐसा संकल्प लेकर के अभी से मन का और मुख का मौन कल के लिए, ऐसा न लगे 20-25 हजार लोगों की बारात आई है लेकिन एकदम फरिश्तों की सभा है। ऐसे सफेद सफेद फरिश्ते, सब कल सफेद ड्रेस में रहना, ठीक है? और सफेद सफेद फरिश्तों का वतन बना देना। ओम शांति।